आए हम सब खुदावंद अपने खुदा के जुड़ चुके हैं और उसकी रहनुमाई मांगे, ताकि आज का एक एक लफ्ज़ खुदा के पाक रूह के आग से ताया हो, ताकि हमारे दिलों में कसरत से घर कर जाए। आज का कलाम हम सब के लिए दोधारी तलवार हो, ताकि हम सब की जिंदगियों में वो नादीदना हिस्सा है उसका, उससे काट कर खुदा खुदा हम सबको पाकीज़गी में और इलाही ज़िंदगी के उस भेद को जानने की कुव्वत और ताकत दे, और जान के उस पर अमल करने की हम सबको तौफीक बख्शे। जो कादरे मुतले खुदा आज का कलाम हम जो पढ़ें, हम सबके कदमों के लिए चिराग, राह के लिए रोशनी, और जब तारीकी हो तो उस रोशनी में चलने का खुदा खुदा फैसला हम करने वाले बने। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। बाइबल मुकद्दस में हम सीख रहे हैं कि कोई तुमको बेफायदा बातों से गुमराह ना करे। हमने पिछले दिनों में देखा था उस नाम मुरझाने वाला ताज के ताज को, उस ताज के बारे में कि यूनानी लोग जो सेहरा पहनते थे वो जैतून के पत्तों का सेहरा होता था, और वो एक दो दिन ही में मुरझा जाता था, सूख जाता था, और फिर वो खाक, राख और या फिर आग की नज़र कर दिया जाता था। पालूस कहता है, तुम उस मुरझाने वाले सेहरे के लिए काम, खिदमत, दुख और मसीही दौड़ नहीं दौड़ते, बल्कि उसके लिए जो ना मुरझाने वाला सेहरा है, ऐसा सेहरा जिसे ताज भी कहा गया है, ऐसा ताज जो कभी भी खत्म नहीं होगा। और फिर हमने देखा ऐसा दूसरा तिमोथियस 4 बाब, उसकी जब हम 7वीं और 8वीं आयत को देखते हैं, तो पालूस रसूल वहां पर हमें इस दूसरे ताज के बारे में, तीसरे ताज के बारे में सिखाता है। आज हम इस हवाले को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक ताज के बारे में सीखा था जो हमें फिलिपियों के खत में मिलता है। फिलिपियों जब 4 बाब पढ़ते हैं तो वहां पर पालूस रसूल उसकी पहली आयत में कहता है कि तुम मेरा खुशी और ताज हो। वो ऐसा ताज है जो ईमानदारों को गवाही देने पर मिलेगा। ईमानदार जब गवाही देते हैं, ईमानदार जब मसीह की मनादी में कायम रहते हैं, तो ईमानदारों को क्या मिलेगा? आसमान पर ताज मिलेगा। तो आज हम तीसरे ताज के बारे में देखेंगे जिसे रासबाजी का ताज कहा गया है। इसलिए आए हम दूसरा तिमोथियस 4 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ें। खुदा और मसीह यीशु को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा, गवाह करके और उसके हजूर और उसके जहूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूं कि तू कलाम की मनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह, हर तरह के तहम्बल और तालीम के साथ समझा दे और मलामत कर और नसीहत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मतवजा होंगे। मगर तू सब बातों में होशियार रह, दुख उठा, बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर, क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूं और मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा, आइंदा के लिए मेरे वास्ते रासबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदल मुनसफ यानी मुझे उस दिन मिलेगा, देगा यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और ना सिर्फ मुझे ही बल्कि उन सब को भी जो उसके जहूर के आरजू मंद हों। बल्कि उन सब को भी जो उसके जहूर के आरजूमंद हों। हम सबको खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला से बरकत मिले। रास्तबाजी का ताज, ये ताज खुदावंद की वफादारी, खुदावंद से वफादार रहने में ये ताज मिलता है। पालूस रसूल बहुत से रसूलों में, बहुत से ईमानदारों में एक वफादार ईमानदार गिना जाता है। ईमानदार तो सभी हैं, कहते हैं ना जी, ये बंदा ईमानदार है, ये बंदा कमज़ोर ईमानदार है, ये बंदा बहुत ही ईमान में मजबूत है। कुछ कहते हैं कि जी ये अच्छा दोस्त है, कुछ कहते हैं ये दोस्त है, कुछ कहते हैं कि ये वफादार दोस्त है। सो पालूस रसूल इस ताज के बारे में जब बात करता है तो इस ताज का जो मिलना है वो किनको मिलेगा? उनको जो पूरी वफादारी से खुदा की खिदमत करेंगे। तमोथियस को, जिसका बाप यूनानी, जिसकी माँ यहूदन यहूदी थी, खुदा तर्स थी, खुदा से मोहब्बत करती थी, उस तमोथियस को वो नसीहत करता है कि अगर तूने खिदमत का बीड़ा उठाया है, अगर खुदा ने वाकया ही तुझे खिदमत के लिए बुलाया है, तो कलाम की क्या कर? मनादी कर। वक्त बा वक्त क्या कर? मनादी कर। हर तरह के तहम्बुल और तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर के ना सिर्फ तब कलाम कर जब तुझे कोई कबूल करे, बल्कि हर हालात में क्या कर? तहम्बल से तलीम के साथ समझा दे, मलामत और नसीहत कर। मलामत के जब किसी को दुरुस्तगी की ज़रूरत है तो उसे दुरुस्त कर के मियाँ बीबी तुम गलत हो, खुदा का कलाम तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं देता। मलामत करना कि ये गलत है, नसीहत करना कि खुदावन की खिदमत करो, खुदावन से मोहब्बत करो। सो पालूस रसूल तमोथियस को ये नसीहत करता है, ये खबरदारी देता है कि आने वाले दिनों में पालूस कहता है जैसे मेरे साथ हुआ कि बहुत से लोगों ने झूठी तालीम को कबूल करके मुझे ना कही है, तुझे भी ना कहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग अपनी ख्वाहिशों से क्या लिखा है, अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे। इसलिए ईमानदारों को वो खबरदार करता है कि अपनी ख्वाहिशों से नहीं बल्कि जानने की ज़रूरत है कि क्या ये वाकया ही खुदा के आईना, खुदा के उस क्या कहते हैं कि तराजू में दुरुस्त है या नहीं। और कहता है कहानियों पर, कहानियाँ बहुत दफ़ा, कहानियाँ जैसे शेख चिली की कहानी, जैसे बहुत सी कहानियाँ, कहानियाँ कहानियाँ ही होती हैं, उसमें हकीकत बहुत दफ़ा पाई नहीं जाती। आज के दौर में, इस माहौल में, इस मुल्क में हमें बहुत सी कहानियाँ मिलती हैं कि ये फलां ने 40 साल धागे पर अपनी ज़िंदगी गुजार दी। ये कहानी है, कहीं पर इसका सच्चा वाक्या लिखा नहीं गया। एक बंदे ने जी पहाड़ को उठा लिया, एक बंदे ने जी 50 दिन कुछ नहीं खाया, एक बंदे ने वो कर दिया। अगर तारीख नहीं लिखी गई तो फिर वो क्या है? एक झूठी और मनगढ़ंत कहानी है। तो पालूस रसूल उसे कहता है होशियार हो, दुख उठा और बशारत का काम अंजाम दे। सो हम ईमानदारों के लिए आज इस हिस्सा में से जो ताज यहां पर बयान किया गया है, पालूस रसूल कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। पालूस को अपने मौत के वक्त के बारे में पता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मेरा वक्त आ गया है, मैंने अपनी उस कुश्ती को, उस लड़ाई को, उस दंगल को बड़े अच्छे तरीके से लड़ा। और कहता है कि मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया। ये बहुत ही मुबारक हाली है जब ईमानदार जानते हैं और कहते हैं कि खुदावन खुदा, मैंने अपना वक्त जो तूने मुझे दिया था पूरा किया। बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो इस वक्त के बारे में जानते थे, जैसे खुदा का बंदा याकूब, इजहाक, पालूस रसूल, यसु मसीह, खुदा का बंदा यूहन्ना और एलिया नबी और बहुत से लोग हैं जो इस बात के बारे में जानते थे कि उनका वक्त आ चुका है, इसलिए वो इस फानी फना होने वाली दुनिया को छोड़कर उस अबदी जिंदगी के सुकून में जाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर क्या सीख सकते हैं? क्या हम अपनी कुश्ती लड़ रहे हैं? बहनों, भाइयों, मैं दूसरी बात, क्या हम अपनी मसीही दौड़ दौड़ रहे हैं? इस मसीही कुश्ती में कुश्ती सुकून की बात नहीं, कुश्ती में दंगल लड़ाई में क्या होता है? जान लगती है, हिकमत लगती है और बहुत दफा बदन का टूटना भी होता है। मसीही जिंदगी भी ऐसी ही है, इस दंगल की मानत है जो हमारा जिस्म की ख्वाहिशों से, दुनिया की ख्वाहिशों से और इब्लीस के फरेबों से लगा हुआ है। और मसीही दौड़ हम कैसे दौड़ रहे हैं? इस दौड़ में जो रास्ता है सीधा है, ऊंचा है, नीचा है, डरावना है, सो इस रास्ते में हम किस तरह जिंदगी दौड़ रहे हैं? याद है आपको पालूस खुदावन का बंदा दाऊद क्या कहता है? जबूर 23 उसकी 4 आयत, किसी को याद है जबानी? बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। पालूस रसूल इस दौड़ को दौड़ते हुए इस बात से वाकिफ था कि वो मौत की वादी में से गुजरेगा और उसे किसी बला से डर नहीं लगेगा। इसलिए हम ईमानदारों को, पालूस रसूल को इस बात का यकीन था कि आइंदा के लिए मेरे वास्ते राजबाजी का वो ताज रखा हुआ है। वो इस बात पर पुक्का यकीन रखता था कि रखा हुआ है, ये नहीं होगा, मिलेगा, उम्मीद करता हूं, या हो सकता है वहां पर कुछ भी नहीं। उसके अल्फाज, उसके जुमले जो खुदा का बंदा लिखता है, मेरे वास्ते रासबाजी का वो ताज रखा हुआ है। ईमानदार अपने हिस्से को जानते हैं, उम्मीद है कि आप भी अपने हिस्से को जानते हैं। अगर ऐसा यकीन नहीं है तो फिर सोचने की जरूरत है कि या फिर हम यकीन में पुख्ता नहीं, या फिर हम मसीही कुश्ती या मसीही दौड़ उस तौर से नहीं दौड़ रहे जिसके लिए हम भी कहें कि हाँ, मैं तेरी बेटी, तेरा बेटा जब तेरी हजूरी में होंगी तो मेरे लिए रासबाजी का ताज। सो ये रासबाजी का ताज वफादारी से, पूरी वफा से। सो इसलिए हम सबको अपनी जिंदगी में इन बातों पर तवज्जो देने की जरूरत है। ईमानदार, अच्छा ईमानदार, बहुत अच्छा ईमानदार, तीनों ईमानदार हैं, लेकिन उनमें क्या है, मुख्तलिफ दर्जे हैं। ऐसा ही है जी। शगिर्द जिसे कह सकते हैं, नया शगिर्द या फिर कारीगर शगिर्द, तो क्या हुआ, तीनों शगिर्द ही है ना जी, लेकिन उनका तजर्बा क्या है, मुनफरिद है। सो ईमानदार, अच्छा ईमानदार, वफादार ईमानदार। आज हम अपनी जिंदगी में देखें कि हम किस हिस्सा में किस किस्म के ईमानदार हैं। ईमानदार हैं, अच्छे ईमानदार हैं या वफादार ईमानदार हैं? क्योंकि ये इनाम, ये ताज, ये अजर, ये सिला, ये तोहफा नहीं है। तोहफा किसी को दिया जाता है उसकी तमाम कमजोरियों, लापरवाहियों को क्या करते हुए, नजरअंदाज करते हुए किसी को तोहफा दिया जाता है। उसमें किसी की कोई काबिलियत नहीं देखी जाती। उसे क्या कहते हैं? तोहफा, कि मैंने नईम को ये तोहफा दिया है, बेशक वो इस काबिल नहीं, फिर भी उसे तोहफे में क्या दे दिया जी? मोटरसाइकिल, ये तोहफा है। लेकिन अगर नईम को 100 मील की दौड़ दौड़नी हो और उसके बाद मोटरसाइकिल मिलो तो क्या वो ठहरेगा? अनाम, बदला, मजदूरी, अजर, सिला। चौपालूस उसूल क्या कहता है? रासबाजी का वो ताज रखा हुआ है, ऐसे ही मिल जाएगा? नहीं, उसके लिए वो क्या कहता है? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, और तीसरी बात कहता है, मैंने ईमान को महफूज रखा। हम किस तरह ईमान महफूज कर सकते हैं? दूसरों को बताने से हमारा ईमान क्या होगा? महफूज होगा। हमारी जिंदगी में से दूसरी जिंदगी में जाएगा तो क्या होगा? ईमान महफूज होगा, दूसरों तक पहुंचेगा। सपालूस रसूल कहता है, मैंने ईमान को महफूज रखा, और इसीलिए वो कहता है, आइंदा के वास्ते मेरे लिए जिंदगी रासबाजी का वो ताज खुदा के हजूर मुझे मिलेगा। और ना वो कहता है कि उसी दिन मुझे मिलेगा, ना सिर्फ मुझे बल्कि उन सब को भी जो उसके जहूर के आरजूमंद हैं। ये थोड़े से जुमले खुदा के कलाम में, ये छोटा सा हिस्सा, इस पर किताबें, इस पर बहुत बहुत बड़े किताबचे लिखे जा सकते हैं। तो सवाल ये है, आज हम किस किस्म के दायरे में अपने आप को देखते हैं? ईमानदार, अच्छा ईमानदार, वफादार ईमानदार। अगर अच्छे ईमानदार हैं तो हमें वफादार ईमानदार बनने की जरूरत है। अगर सिर्फ ईमानदार ही हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मुआ, तो उससे आगे अच्छे ईमानदार की तरफ बढ़ने की जरूरत है। अगर अच्छे ईमानदार हो चुके हैं तो फिर वफादारी की तरफ जाने की जरूरत है। ये हम सब के लिए है, मेरे लिए है, आपके लिए है, हर फर्दे बशर के लिए है। हरगिज ना कहें कि पादरी साहब कामल हो चुके, वो पा चुके। पालूस रसूल इस भेद को, इस बात को वाजिया कर देता है कि मैं इनाम की तरफ दौड़ता हुआ जाता हूं ताकि उसे उस नाम को हासिल करूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं पा चुका या कामल हो चुका, बल्कि इनाम को तकता हुआ उसकी तरफ जाता हूं। किस किस्म का नाम हम चाहते हैं? रासबाजी का सेहरा, खुदावन की हजूरी में ये सेहरा मिलेगा। मैं तो चाहता हूं कि ये सेहरा मेरे सिर पर हो, आप भी ये चाहते हैं। इस सेहरे को कमाने के लिए इस सफर को करना होगा, इस कुश्ती को लड़ना होगा, इस दौड़ को चलना दौड़ना होगा। आज हम अपनी जिंदगियों में देखें, हमें ईमान में मजबूत होने की जरूरत है। समंदर की उन लहरों की तरह इधर उधर डगमगाते या इधर उधर गिरते ना पड़े, बल्कि अपने कामल करने वाले यीशु मसीह को तकें। अगर पानी पर चलना चाहते हैं तो यीशु मसीह को तकेंगे तो पानी पर चलेंगे। इसका हरगिज मतलब नहीं कि आप जाके आज नहर पर चलने की कोशिश करें और ठंड लगा के वापस आ जाएं। उस दौर में पतरस पानी पर चला, आज के दौर में हमारे सामने जितनी जिंदगी इतनी कठिन है कि उसे गुजारना नामुमकिन है, लेकिन हम अगर यीशु मसीह को देखते रहेंगे तो वो हमारी रहनुमाई करेगा। इसलिए खुदावंद के लोगों, हमें अपनी जिंदगी में इस बात पर गौर करने की जरूरत है। आए हम खुदा के जुड़ चुके कि हम कहाँ पर हैं। खुदा से कहें कि खुदावन, क्या मैं सिर्फ ईमानदार हूँ, अच्छा ईमानदार हूँ, या वफादार ईमानदार हूँ? खुदा बाप, आज का कलाम हम सब के लिए खुदा खुदा उस पीने के मानद हो। खुदा 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 खुदाऊँ खुदा उस खुदाऊँ खुदा सुवे की मानद हो जो खुदाऊँ खुदा जब बैल खेत में काम करता है तो उसके खुदाऊँ खुदा गर्दन पर लगाया जाता है ताकि वो दुरुस्त चले। खुदाऊँ खुदा आज का कलाम हमारे लिए उस आर की मानद हो ताकि हमारे उन हिस्सों में जहाँ पर खुदाऊँ खुदा जो हिस्से तेरी जिंदगी के लिए वक़फ़ नहीं उन हिस्सों को खुदाऊँ खुदा खरो दे और हम सब वफादारी से पालूस की तरह तमोथियस की तरह और खुदावंद यीशु मसीह की तरह ज़मीन पर तेरी रहनुमाई में ज़िंदगी बसर करने वाले बने। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते हैं।